آمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی تک رمضان کے 5 دن گزر چکے ہیں اور اسی طرح تیزی کے ساتھ نیکسٹ 5 دن گزر جائیں گے. وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری قیامت قریب ہے. ہماری زندگی بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. اس زندگی میں رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پھر بھی موقع دے دیا کہ ہم سب سیدھے ہو جائیں. یہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں نا کہ ہم سیدھے ہو جائیں، کیونکہ اکثر ہم اپنی زندگی میں بس جیسے تیسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں چانس دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان ملا اب اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو اس مہینے میں اپنی بخشش کروانا آپشن نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر رمضان میں نہیں بھی ہوئی تو بعد میں توبہ کر لیں گے. نہیں، اس مہینے میں بھی اگر کسی نے توبہ نہ کی اور اللہ کی طرف نہ پلٹا تو وہ برباد ہو گیا. لہذا اس مہینے کو ایسے نہیں گزارنا جیسے عام دن گزرتے ہیں. اس مہینے کو قیمتی سمجھ کے گزارنا. اس مہینے میں وہ کام شروع کرنے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں کنٹینیو کر سکیں. وہ کام جو آج تک آپ سوچ رہے تھے کہ یہ میں نے کام نیکی کے شروع کرنے ہیں، آج کروں گی، کل کروں گی، پرسوں کروں گی، اور آج کا دن آ گیا، بہت اچھا موقع ہے کہ اب آپ شروع کریں. اسی طرح وہ گناہ جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ آج تک ہم نکال نہیں پائے یہی سوچ کے کہ اچھا میں چھوڑ دوں گی، یہ گناہ چھوڑ دوں گی، کرتے کرتے آج کا دن آ گیا، ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ سے توبہ کر لیں. توبہ ہوتی ہی وہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے. اور اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش میں جو بھی حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوگی، تھوڑی سی. اور وہ شکور ہے، الشکور اس کا نام ہے، یعنی بہت قدردان. وہ بڑی قدر کرتا ہے آپ کی نیکیوں کی، آپ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو اللہ تعالیٰ لے کے اور ان کے بدلے میں بخشش کر دیتا ہے. لہٰذا تھوڑی بھاگ دوڑ دکھائیں، تھوڑی کوشش دکھائیں، تھوڑی ہل جل دکھائیں کہ میں بڑی کوشش کر رہی ہوں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوششوں کو دیکھنا ہے. ہم سب کے حالات مختلف ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی جابس بھی ساتھ کرتا ہے، کوئی فارغ ہے، کسی کے کسی قسم کے کام ہیں، کسی کے کسی اور قسم کے، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بچے بڑے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، حالات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ہی دیکھ رہا ہے کہ کس کی کوشش کتنی ہے. ایک بندہ فارغ ہے، سارا دن بیٹھا ہو، اس کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے. ایک بندہ ہے، وہ صرف اپنے آپ کو بزی دکھاتا ہے، بزی ہے نہیں. بزی دکھانا بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، یعنی بڑی مصروفیت ہے، ادھر لیٹ گئے، ادھر بیٹھ گئے، ادھر سو گئے، ادھر گپ شپ کر لی، ادھر تھوڑا کمپیوٹر چیک کر لیا، اپنی فیس بک اور یہ تھوڑی دیر فون کے اوپر بیٹھ گئے. وہ بہت بزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں. تو یہ وہ والے بزی ہیں جو اپنے آپ کو بزی دکھاتے ہیں، وہ بزی نہیں ہیں. مگر انہیں لا حاصل کام، ایسے کام جو لغویات میں شامل ہیں، ان کو زندگی میں داخل کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ مصروف رہتے ہیں. تو کہیں ہماری مصروفیت اس قسم کی تو نہیں ہے؟ لہٰذا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرا دن کہاں جاتا ہے. یاد رکھیے، دن کافی لمبا ہے، بہت چھوٹے دن نہیں آج کل. اگر آپ 1-1.5 گھنٹے کا اپنا صفائی کا ٹائم رکھیں، कि मैंने 1-1.5 घंटा बस सफाई करनी है। डिपेंड करता है आपका घर कितना बड़ा है, सारे घर की एक ही दिन ना शुरू कर दे। इसी तरह हर रोज हर जगह को साफ करना जरूरी भी नहीं है। 1-1.5 घंटा अगर आप सफाई के लिए लगाते हैं हिकमत के साथ, इसी तरह आप मिसाल के तौर पे 2 घंटे, चलो मैक्सिमम मैक्सिमम, ये भी बहुत ज्यादा है, किसी के पास नहीं हेल्प हो तो उसके लिए 2 घंटे आप अफ्तारी बनाने में लगाते हैं, तो ये कितने हो गए, 3.5 घंटे। दिन तो काफी लंबा होता है, बाकी टाइम किधर जाता है? पूछिए अपने आप से किधर जाता है बाकी टाइम। चलो थोड़ी देर कुरान भी पढ़ लिया, उसके बाद क्या करते हैं? कुरान सारा दिन तो कोई भी नहीं पढ़ रहा होता, क्या कर रहे थे हम बाकी दिन? आजकल तो कोई ऐसी खास मसरूफियात नहीं है, जो लोग बिजनेसेस में हैं जॉब्स में उनकी अलग बात है, जो घर में औरत होती है उसका कहाँ वक्त जाता है। तो अपने वक्त को मैनेज करना सीखिए कि मुझे बस इतने टाइम में ये करना है, कभी इधर खड़े हो जाना, कभी उधर कुछ देख लेना, कभी इधर कुछ कर लेना, कभी अपनी सोचों में ही मसरूफ रहना, इससे वक्त जाया हो रहा है। तो इस वक्त को जाया बिल्कुल नहीं करना, फजूल की डिस्कशंस नहीं करनी, घर वालों के साथ भी फजूल बातों में लगे रहना, तो ये गपशप के दिन नहीं है, ये दिन गुजर जाने हैं। गपशप के लिए बड़ा टाइम पड़ा है, सहेलियों से बातें करने के लिए बहुत वक्त है। ये दिन वो कीमती दिन है जो निकल गए हमारे हाथ से, तो पता नहीं दोबारा कभी आएंगे भी या नहीं आएंगे। अगर हमने अगला रमजान देख भी लिया तो वो ये रमजान नहीं होगा। और हर रमजान में आप देखें आपके दिल की हालत डिफरेंट होती है, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, हमेशा दिल एक जैसे नहीं रहते, दिल भी उलटता पुलटता रहता है। कभी आपको अपने ईमान का लेवल बहुत ज्यादा लगता है, कभी लगता है कि नहीं बड़ा कम हुआ, बड़ा क्या हो गया, तो उसकी वजह तलाश कीजिए, क्यों कम हुआ, रमजान में क्यों दिल नहीं लग रहा, नहीं क्यों क्यों मैं थकी थकी रहती हूँ, सुस्त रहती हूँ, क्यों मैं एफिशिएंटली नेकी के कामों में नहीं दौड़ पा रही, क्या वाकई कोई जिस्मानी कमजोरी है या बस दिल ही नहीं लगता। तो इन चीजों को हमने खुद देखना है, अपनी जिंदगी से निकालना है। देखें जिसकी जिंदगी में अभी काम उसने सोचा हुआ है ना कि मैं ये फलां नेकी अभी करूंगा या फलां गुनाह अभी छोड़ूंगा, अभी भी ये अगर सोच रहे हैं तो बड़ी हमाकत है, क्योंकि जिंदगी का तो कोई पता नहीं है। सुफान बिन सुलेम के बारे में आता है कि अगर उनको कहा जाता कि कल कयामत है तो उनके पास और कोई ज्यादा नेकी थी नहीं जो वो करना चाहें। सुभान अल्लाह, यानी वो लोग ऐसे नहीं थे कि बस सोच सोच के ही रखा हुआ, हाँ करूंगी, ये कभी मौका मिलेगा तब कर लूंगी, अभी तो बड़ी मसरूफियत है, अभी तो ये काम है, अभी तो वो चीजें हैं, क्योंकि ये जिंदगी तो भागी जा रही है, दौड़ी जा रही है, हमारे हाथों से निकली जा रही है। इसमें अगर हमने कुछ जमा ना किया तो अल्लाह के सामने क्या लेके जाएंगे। लिहाजा इसको अकलमंदी के साथ गुजारना है। हम सब अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा अकलमंद वो ही है जो इस जिंदगी को जान ले और फिर इसको उस तरह गुजारे कि आखरत में ऐश करे, फिर ऐश करे, वाकई वो ऐश है, इस दुनिया में ऐश नहीं है। हमने कल बात की थी ना कि दुनिया की मोहब्बत जड़ है हर बुराई की, झूठ भी इसकी वजह से आता है, इंसान झूठ बोलता है, कोई यहाँ से जरा सा सेविंग करनी है, वहां जरा मेरा कोई बचत हो जाए, कोई नुकसान ना हो पाए, कोई धोखा भी इसके लिए देता है, बुखल भी इसके लिए करता है, लालच भी इसके लिए करता है, हसद भी इसके लिए करता है, कीने भी इसके लिए रखता है, इतनी सारी बीमारियां, तकब्बुर भी इससे आता है, शो ऑफ भी इससे आती है, रियाकारी, तो बहुत सारी बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। तो इस दुनिया की मोहब्बत को जिसने खुरच के निकाला दिल से, इसकी अटैचमेंट को कम किया, तो मैंने आपको बताया था वही कल्बे सलीम बनता है फिर। और हमने उस दिन ये बात की थी कि उस दिन कुराने पाक में क्या आता है कि उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे, क्या सिर्फ काम आएगा, बचत सिर्फ उसकी होगी जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेके गया। कद अफलाह मन ज़क्काहा वो कद ख्वाबा मन दस्सा, वो तो बर्बाद हो गया जिसने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, वही कामयाब है जिसने इसको पाक किया है। तो तस्किया नफ्स समझ लें कि जरूरी है, ये ऐसे नहीं कि ऑप्शनल है, चलो अब रमजान के अंदर हम और कुछ नहीं जो ये टॉपिक कर लेते हैं, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि हर बालिग मुसलमान अपने दिल में झांक के देखे, क्योंकि दिल साफ होगा तो जुबान साफ होगी। जुबान जो है ना वो दिल की तर्जुमान है, जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। तो इस दुनिया की मोहब्बत के अंदर हम कैसे पागल हुए जा रहे हैं, इसका नशा उतरता ही नहीं। नशा होता है, ये भी नशा है, ये उतरने का नाम नहीं लेता। जब उतरता है तो उस वक्त उतरता है जब सामने मौत का फरिश्ता खड़ा होता है। इब्ने हजम फरमाते हैं कि जो इस जिंदगी को हकीकत को जान लेगा वो इसकी आसानियों में खुश नहीं हो सकता और इसकी सख्तियों में गमजदा नहीं होगा। यानी क्या चीज है ये, इतनी फानी, इसकी तो जब समझ आती है ना तो ये गुजर ही चुकी होती है। तो इंसान सोच ले कि इस फानी के लिए अपने हमेशा के मजे को कुर्बान कर रहा। सहाबा कराम जब 40 साल के होते थे ना तो वो संभल जाते थे कि ये अब बस लाइफ का, वो अपने अपने ना शबो रोज यानी मेहनत ज्यादा शुरू कर देते थे, उसमें डिफरेंट कर लेते थे कि अब आगे का वक्त शुरू होने वाला है। और 60 ईयर का बंदा जब हो जाता है तो उसके तो अल्लाह के सामने उजर ही खत्म हो जाता है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इतनी मोहलत दे दी, 60 साल मेच्योरिटी दे दी इसको, इसमें किसी को समझ आनी हो तो आ सकती, तब भी अगर कोई ना समझे तो फिर तो कब समझेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में ये समझ लें कि ये हमेशा नहीं रहनी, मैंने इन दिनों को ऐसे गुजारना है कि कभी ये दोबारा नहीं आने। सोचें इसराफील अलैहिस्सलाम मुंह में सूर पकड़े हुए हैं और उनकी निगाहें ऊपर को हैं और वो मुंतजर हैं कि कब मुझे हुक्म हो जाए और मैं सूर फूंक दूं और कयामत बरपा हो जाए, और इधर हमारे हाल क्या है कि हम ये सोच के बैठे हैं कि अभी बड़ा टाइम है, अभी बड़ी जिंदगी है। अगर जिंदगी को सीखना है ना तो वो कहते हैं ना हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री से को लोग क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसके जरिए जाने कि आप क्या आगे एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इंसान अगर हिस्ट्री में उठा के देखे, बड़ी बड़ी शहजादियां आई, बड़ी बड़ी मलकाएं आई, बड़े बड़े लोग आए, फिर क्या हुआ उनके साथ, जिनको बड़ी शोहरतें मिली, जिनकी बड़ी तारीफें हुई, जिनके पास माल भी था, हुसन भी था, स्टेटस भी था, नाम भी था, फिर क्या हुआ उनके साथ, आज तक बैठे हुए वो, बड़े बड़े फिरौन आए हैं और एक बड़े फिरौन का तो कुरान में भी जिक्र है। अल्लाह हू अकबर, लेकिन सब फना हो गए, कोई अपने आप को बचा ना सका और सब छोड़ गए वो सब चीजें जिनके पीछे उन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी थी, बर्बाद कर दिया अपना वक्त। वो ऐश में यहाँ पे रहते थे, वो सोचते थे कि कभी ये खत्म नहीं होना। तो याद रखिए मौत आ गई तो अमल का संदूक हमेशा के लिए बंद हो जाना। अबू मूसा आशरी जो थे ना वो अपनी वफात से पहले बड़ी सख्त रियाजतें करते थे, यानी बड़ी मेहनत करते थे, नेकियों में बहुत भाग दौड़ करते थे। लोगों ने कहा आप इतनी मेहनत ना किया करें, अपने आप पे कुछ नरमी करें, मतलब आप इतनी की करने की क्या जरूरत है। तो फरमाया घुड़दौड़ में घोड़ा जब आखिरी निशान पे पहुंचने वाला होता है तो दौड़ने में अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर देता है, मेरी उम्र तो इससे बहुत कम बाकी रह गई। अपनी बीवी से कहा करते थे, अपनी सवारी तैयार रखो, जहन्नुम में कोई पुल नहीं होगा कि पार कर जाओ। तो इसलिए हम भी ये सोचें, वो तो सहाबा थे, उनकी तो जिंदगियां पहले ही माशाल्लाह इतनी काबिले रश्क थी, और हमने तो कुछ आज तक किया नहीं, तो फिर हम क्यों गफलत में अपना वक्त गुजारें। जिस मुसाफिर को डर हो कि वो कहीं ऐसा ना हो मंजिल से लेट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मंजिल पे ना पहुंच सके, वो रात को सो नहीं पाता। आपको पता है जब हमारी कहीं से फ्लाइट होती है, आधी रात को अगर फ्लाइट है तो पूरी रात ही नहीं नींद आती। क्यों नहीं नींद आती? हाय कहीं लेट ना हो जाए, हाय कहीं एयरपोर्ट पहुंचने में कोई ताखीर ना हो जाए, या ऐसा ना हो कि आँख ही ना खुले, तो पूरी रात सो ही नहीं पाते। ऐसा ही है ना सबके साथ, इसलिए कि हमें फिक्र होती है, हमें मंजिल पे पहुंचना है। तो फिर वो ऐसा इंसान जिसको ये फिक्र होती है, वो रात के आगाज में ही अपना सफर शुरू कर देता है, और जो ऐसा करता है वो मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो सोए रह जाए और सोचें कि वो उठ जाएंगे कोई बात नहीं, तो फिर उनके साथ क्या होता है? तो यही हमारी जिंदगी का हाल है, अगर हमें मंजिल पे पहुंचना है ना, और हमारी मंजिल जन्नत है, तो सफर का आगाज जल्दी करें। ये नहीं कि कोई ऐसी बीमारी लग जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला हो जाए, और उसके बाद इंसान सोचे आ मैंने तो अभी बहुत नेकियां करनी थी, वक्त ही नहीं मिला। जैसे कुरान पाक में कितनी जगहों पे आती है इंसान की हसरत, एक जगह पे आता है जब उसको मौत आने लगती है, तो फिर कहता है अय अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं इतना मौका दिया कि मैं नेक हो जाता, मैं कुछ सदका ही कर लेता। तो इंसान को कब जाके याद आता है? जब जिंदगी खत्म होने वाली होती है। तो इसका जो वो नशा है ना, वो इंसान को इस तरफ आने नहीं देता। लिहाजा अपनी जिंदगी सोच समझ के गुजारिए। ये आपको ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को आप मसलन 1 लाख रुपया दे देते हैं और कहते हैं चलो तुम इसको खर्च करो, लगाओ। एक बंदा वो हो सकता है जो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे कि जहाँ पे उसको बड़ा प्रॉफिट आए, दूसरा वो हो सकता है जो उसको उड़ा दे, जाया कर दे, और उसके बाद बैठे दूसरों की तरफ देख रहा है, उसके हाथ में कुछ भी ना रहे। तो इनमें अकलमंद कौन है जिसने ऐसी जगह लगाया कि उसको मुनाफा मिलता ही गया? तो ये जिंदगी तो पैसों से भी ज्यादा कीमती है। इसको हमें अल्लाह ताला ने दिया कि अब इसको इन्वेस्ट करो। अब हम किधर इन्वेस्ट करें कि हमें प्रॉफिट मिलता ही रहे, वहां इन्वेस्ट कीजिए। इसको उड़ाएं नहीं, उड़ा दी खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसलिए दुनिया की मोहब्बत ये दिल से जरा कम करें। मैंने आपको कहा था इसके लिए कि अटैचमेंट्स को कम कीजिए, मटेरियल चीजों के साथ जो अटैचमेंट, जो क्रेजी हो जाते। कभी किसी के लिए कोई चीज होती, किसी के लिए कोई होती है, वो तो जो भी मटेरियल चीजें हैं ये सब फानी है। इनके साथ अटैचमेंट कम कीजिए। इवन रिश्तों के साथ भी ऐसी अटैचमेंट ना रखें कि अगर वो दूर हो जाए तो बस सब कुछ खत्म हो गया, बेकार होके बैठ गए, इनके गम में ही रोते जा रहे। याद रखें ये रिश्ते भी अल्लाह ने दिए हैं, ये जो बंदे हैं ये अल्लाह की मखलूक है। लिहाजा जो कोई अगर दूर हो जाए तो इसके लिए भी खुद को तैयार करें, इसको कबूल करने के लिए। इसी तरह बाज़ लोग जिस्मानी हाल हुलिये से इतनी अटैचमेंट रखते हैं, अपना सारा वक्त ही बनने संवरने में सर्व कर देते हैं कि मैं ऐसी दिख रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं मैं मेरे कपड़े कैसे हैं, पता नहीं मेरे फेस कैसा है, पता नहीं मेरा कॉम्प्लेक्शन का क्या हुआ। एक वो उनको यही सोच रहती है कि हाय मेरा रंग तो डार्क नहीं हो गया, हाय मेरे बाल तो नहीं गिर गए, हाय मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ तो नहीं पड़ गई। तो ये भी टू मच अटैचमेंट है अपने जाहिर के साथ। इसी तरह बाज लोग अपने माजी से ही अटैच रहते हैं, पिछली बातों को ही नहीं छोड़ते, उन्हीं ट्रेजिडीज को दोहराते ही रहते हैं, और कितना अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। वो ही पिछली गम या तकलीफें उनके दिमाग पे हर वक्त सवार रहती हैं और उनके जिक्र करते नहीं थकते। तो माजी की अटैचमेंट से भी निकलना, माजी के वाकयात को सोच सोच के अपना वक्त और अपनी तवानाई बर्बाद नहीं करनी। तो जब तक हम इन मटीरियलिस्टिक चीजों से खुद को डिटैच नहीं करते या अपनी अटैचमेंट कम नहीं करते, तो कहीं और अटैच हो भी नहीं सकते। पिछली बातों और गमों को अगर एक तरफ उतार के नहीं रख सकते, तो दिल कहीं और लग ही नहीं सकता। फिर दिल कहीं एक जगह ही मशगूल होगा ना, एक जगह ही बिजी होगा ना दिल। यहाँ तो दिल को बिजी कर ले यहाँ की चीजों में, यहाँ को दिल को बिजी कर ले अल्लाह की याद में। ठीक है, तो इसलिए इनसे खुद को थोड़ा अलग कीजिए। हर चीज के अंदर कोशिश कीजिए कि अल्लाह का जिक्र आ जाए। कुछ अच्छा मिल गया तो फौरन कहें या रब्बी लक अलहम्द, या अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अच्छी चीज देखें, सुभान अल्लाह। बच्चे अच्छे निकल आए, माल मिल गया, हुस्नो जमाल आपको मिल गया है, तो ये नहीं कि हाय कितनी हसीन लग रही हूं मैं, ये मुझे कितनी अच्छी चीज मिल गई, वाह। और ये अल्लाह तूने कितना अच्छा ये कर दिया, मेरा चेहरा अगर खूबसूरत है तो अल्लाह तू है अल मुसव्विर, तूने कितनी बेहतरीन तस्वीर कशी की। तो हर चीज को ना अल्लाह के साथ जोड़ना सीखे। बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो उनको शाबाश जरूर दें, मगर उससे पहले ये कहें अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इन बच्चों को ये हिदायत दी। तो इस तरह हम अपने आप को थोड़ा सा यहां से डिटैच करके अल्लाह ताला के साथ हर चीज को अटैच करें। ठीक जो दिल सलीम दिल होता है ना, सलामत दिल, उसकी अटैचमेंट हर वक्त अल्लाह के साथ होती है। वो चाहे तस्बीह लेके नहीं भी बैठा हो, मगर वो हर चीज को अल्लाह के साथ रिलेट करता है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें आती है ना, अल्लज़ी खलकनी फ़हुवा यहदीनी वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी वयस्कीनी इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीनी अल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीनी। इस तरह वो सारी देखें चीज़ें उसने ही मुझे पैदा किया, उसने ही मुझे हिदायत दी, वही मुझे खिलाता है पिलाता है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ वही मुझे शिफा देता है। ठीक है, तो हमने ये सीखना है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला के साथ अटैच उसको करना, हर चीज़। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए, हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल के अपनी मोहब्बत भर दे। आज का जो जिक्र है ये रात का जिक्र है, रात का जिक्र, कि एक हम दिन में भी जिक्र करते हैं ना और एक रात का भी जिक्र होता है। अक्सर हमें रात को बाथरूम जाना पड़ता है तो नींद उठ खुली जाती है। अब वो उस वक्त वो भी टाइम नहीं होता कि हम कोई नफल पढ़ें, खड़े हो जाएं। अब हमरा बिस्तर पे आके जब लेटते हैं तो उस वक्त आपने कुछ कलिमात कहने हैं। अगर आपने वो कलिमात कह दिए और उसके बाद दुआ कर ली, तो जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। ठीक है, तो सोचेंगे कितने इंपॉर्टेंट है ये कलिमात, और बहुत ही आसान है। पहला आपने वो कलिमा कहना है जो हमने जिक्र में अपने पहले मेंशन किया हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है, दूसरा भी कलिमा हम कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह व सुभानल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आसान है ना, ये कलिमात सबको आते हैं। पहले जिसको हम चौथा कलमा कहते हैं, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, चूंकि पहले आ चुका है, शुरू में ही आ गया, तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहना, अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हो गया। तो हदीस में आता है कि फिर अगर इंसान कहता है अल्लाहुम्मग़फिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, या कोई भी दुआ करता है तो वो दुआ कबूल होती है। तो इंशाल्लाह हम अब इसको याद रखेंगे कि जब हम रात को उठें और फिर उसके बाद बिस्तर पे आते हैं, तो फिर हम ये कलिमात करें। इसके लिए कोई वुजू की ज़रूरत नहीं, वुजू के बगैर भी आप ये कह सकते हैं। जो लोग नापाकी की हालत में होते हैं वो भी कह सकते हैं। ठीक है, आज की दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल जुन, अल्लाह मुझे बुजदिली से अपनी पनाह में ले ले। बुजदिली भी बहुत ही बड़ी एक बीमारी है, जो बुजदिल इंसान होता है वो कोई काम नहीं कर सकता। व आउज़ु बिका मिनल बुखल, बुखल ये भी एक दिल की तंगी का नाम है। बुखल सिर्फ पैसों में नहीं होता, बुखल चीज़ों में भी होता है, बुखल किसी तक खैर पहुंचाने में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में बुखल होता है। ये इंसान कहता है कि मैं रोक लूँ लोगों से, उनको देना नहीं चाहता किसी को भी कोई चीज़, कोई भी खैर और भलाई। वाउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्दलिल उमर, और अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ इससे कि मैं लौटाई जाऊँ रजील उम्र की तरफ। रजील उम्र कौन सी होती है? जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता। वो ये कोई एज का फिगर नहीं है कि हम कहें कि 80 ईयर्स में रजील उम्र होती है या 90 में रजील उम्र होती है। नहीं, बहुत सारे लोग 90 में भी बड़े अच्छे भले होते हैं, बहुत सारे लोग 70 साल में ही उनके दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, या बेड रिडन हो जाती है, या ऐसी कोई चीज़ उनको लाहक हो जाती है, ऐसी कोई बीमारी। तो अल्लाह रजील बुढ़ापे से अल्लाह महफूज रखना कि इंसान या तो बिस्तरों पे एड़ियां रगड़ा, या जिस्मानी तौर पे तो ठीक है लेकिन दिमाग ही काम नहीं करता। तो ये भी एक बहुत इंसान के लिए तकलीफदेह चीज़ है। कितने ही लोगों को आप ओल्ड होम्स में देखते हैं, क्या काबिले रहम हालत होती है। अल्लाह ऐसी उम्र से महफूज रखना। वाउज़ुबिका मिन फितनत दुनिया, अल्लाह दुनिया के फितनों से महफूज रखना। दुनिया में आज इतने फितने हैं, ईमान के फितने, और इंसान तरह तरह के, यानी फितनों की, ऐसे लगता है कि जैसे ना वो ये हदीस ठीक साबित हो गई आज के वक्त के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे घरों के ऊपर फितनों को ऐसे देख रहा हूँ कि बारिश के कतरे, यानी एक के बाद एक। बारिश का कतरा ऐसे ही होता है, अभी हम एक चीज़ देखते हैं तो फिर एक और चीज़ आ जाती है, फिर और कोई चीज़ आ जाती है। तो अल्लाह इनसे महफूज रखना। वअज़ाबिल कब्र, और अल्लाह कब्र के अज़ाब से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज़ कब्र के अज़ाब से पनाह मांगी। तो ये जो दुआ है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम नमाज के बाद ख़ास तौर पे मांगते थे, नमाज के बाद। तो नमाज के बाद इस दुआ को शामिल कर लेना। हमें नहीं पता कितनी हमारी ज़िंदगी है, तो ये ना हो कि अर्ज़ल उम्र के अंदर रज़ील उम्र तक पहुंच जाए, दुनिया के फितनों में कहीं ना पड़ जाए, असाबे कब्र से पनाह ऐसी। तो बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह बुखल, बुखल से तो जो महफूज रहा, तो बड़े अल्लाह ताला की उसके ऊपर करम नवाजी होती, और बुजदिली से अल्लाह ताला इन दुआओं को हम सब के हक में कबूल फरमाए, हमारे घर वालों के भी हक में कबूल फरमाए। अल्लाह हमें जिक्र करने वाली जुबान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, और अल्लाह हमसे बेहतरीन इबादत ले लेना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।